بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم مہدی صاحب کے ساتھ ہفتہ وار سوال و جواب کی براہ راست نشست کو لے کر پھر حاضر خدمت ہیں. آغاز کرتے ہیں ہم سے بہت شکریہ آپ کے وقت کا. جماعت اسلامی ماضی حال مستقبل سلسلہ گفتگو کی آج نویں نشست ہے, اور ہم یہ جان رہے تھے کہ مولانا مودودی نے جس جماعت کو وجود پذیر کیا اس کی زندگی کے کیا اہم واقعات تھے, غامدی صاحب انہیں کیسے دیکھتے ہیں تاریخ کے پس منظر میں, اور ان میں ان کی اگر کسی پہلو سے تنقید ہے تو وہ کیا ہے. غام صاحب, کچھ بڑے بڑے واقعات جب ہم دیکھتے ہیں جماعت اسلامی کی زندگی پہ, ہم نے گفتگو کی دو تین نشستوں میں, ایک 56 کے دستور پر ان کی تجاویز تھیں, اور اس سے پوری ان کی جماعت کے جدوجہد کا رخ بھی متعین ہوا, اور خود ملک کے اندر کیا قانون ہوگا, کیا نظام ہوگا, کیا اورینٹیشن ہوگی اس ریاست کی, اس کو بھی ایک سمت دی گئی, اور اس کے آگے ہم نے نتائج بھی دیکھے. ایک اور بہت بڑا مارکت اور آرا واقعہ جو نظر آتا ہے, اگرچہ مولانا مودودی خود ایک کنزرویٹو مذہبی پس منظر کے آدمی ہیں, لیکن جنرل ایوب خان جس وقت انتخاب لڑنے کے لیے میدان میں اترے تو چشم فلک نے دیکھا کہ 1964 میں ایک مذہبی عالم نے فاطمہ جناح کی حمایت کا اعلان کیا, اور اس وقت جو باقی مذہبی قیادت تھی وہ اس کے بالکل برخلاف کھڑی تھی. مولانا نے باقاعدہ ایک پورا کا پورا استدلال دیا, اور ہم نے دیکھا کہ خود ان کی جماعت کے اندر ان کے جو ساتھی تھے, ان کے جو رفقا تھے, انہوں نے اس استدلال کے اوپر ان سے اختلاف کیا. میں جاننا چاہتا ہوں آپ سے کیا ہے آپ کے حافظے میں علم ہے کہ کیا ہوا تھا کہ مولانا مودودی نے کیا عورت کی حکمرانی کو جائز قرار دے دیا تھا, فاطمہ جناح کی حمایت کے کیا محرکات ہوئے, اور جو جماعت کا ایک اندرونی اختلاف تھا خود مولانا مینا حسن اصلاحی کا حکمت عملی کے باب میں, وہ کیا تھا؟
یہ آپ کے علم میں ہے کہ ہمارے ہاں عام طور پر یہ مانا جاتا ہے کہ اسلام میں عورت حکومت نہیں کر سکتی.
جی, بعض روایتوں میں آتا ہے.
ہمارے علماء نے اس کے بارے میں بعض چیزیں لکھی بھی ہیں, ان کو پڑھنے سے بھی یہ اندازہ ہوتا ہے کہ مراجع استدلال کیا رہے. مولانا سید ابو العلا صاحب مودودی کا عمومی مزاج سلفی ہے, یعنی روایات میں جو چیزیں بیان ہوتی ہیں وہ بالعموم ان کو اسی طرح لیتے ہیں. چنانچہ موجودہ زمانے میں یہ معلوم ہے کہ تصویر کا معاملہ غیر معمولی اہمیت اختیار کر گیا. تصویر محض کسی مصور کے شاہکار کی حیثیت سے دیوار پر لگانے کی چیز نہیں رہی, اس سے آگے بڑھ کر وہ زندگی میں روزمرہ معمولات میں داخل ہو گئی, علم میں داخل ہو گئی, یہاں تک کہ شناخت کا ایک بڑا ذریعہ بن گئی. اب وہ آپ کے پاسپورٹ پر بھی آنی ہے, وہ آپ کے شناختی کارڈ پر بھی آنی ہے, اس کو دیکھ کر آپ کے بارے میں کوئی رائے دوسرے ملکوں میں لوگوں نے قائم کرنی ہے, اس طرح کی بہت سی ضرورتیں, اور پھر خاص طور پر تعلیمات میں, یعنی آپ کوئی علم پڑھانا چاہتے ہیں, کوئی ہنر سکھانا چاہتے ہیں, اس میں اس کی بڑی اہمیت ہو گئی. طب کے علم میں خاص طور پر, اس میں تو بتایا یہ جاتا ہے کہ ہمارے جسم کے اعضاء کیسے کام کرتے ہیں, پورا جسم کیا ہے, ان کا باہمی ربط کیا ہے, اگر کوئی آپریشن کرنا ہے تو کیسے کرنا ہے. تو پڑھانے میں, تعلیم دینے میں, اور بہت سے معاملات میں تصویر کو بڑی غیر معمولی اہمیت موجودہ زمانے میں حاصل ہو گئی. لیکن اگر آپ دیکھیں تو بعض روایات کی بنیاد پر وہ یہی کہتے ہیں کہ تصویر حرام مطلق ہے. اسی طرح کا معاملہ موسیقی کا ہے, اور بھی بعض چیزیں ہیں جن کی مثال دی جا سکتی ہے. اسی اصول پر انہوں نے عورت کی حکمرانی کے بارے میں بھی ایک رائے قائم کی, اور اس کا وہ بارہا اظہار کر چکے تھے. یہ رائے جس روایت کی بنیاد پر قائم کی گئی ہے اس پر سند کے لحاظ سے بھی بہت گفتگو کی جا سکتی ہے. جن صحابی نے وہ روایت بیان کی ہے, انہوں نے کب بیان کی, کس موقع پر بیان کی, اس کی نوعیت کیا تھی, اس کے بارے میں بھی 10 باتیں کہی جا سکتی ہیں. حرمتوں اور حلتوں کا بیان کیسے ہونا چاہیے, اس پر اصول میں بھی بہت سی گفتگو کی جا سکتی ہے. یعنی کیا فی الواقع ایسا ہی ہوتا ہے کہ ایک چیز کو حرام مطلق قرار دینا ہے اور پیغمبر کسی موقع کے اوپر ایک بالواسطہ تبصرہ کرتے ہیں؟ جیسے ہم اس سے پہلے بیان کر چکے ہیں کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خاص موقع پر یہ جملہ بولا کہ انا لا اسافی النساء. یہ جملہ جس موقع پر بولا گیا ہے اس پر اس کو سمجھیے, سمجھ میں آتا ہے, لیکن اس کا بھی اسی طریقے سے ایک عمومی اطلاق لوگوں نے کر لیا. رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بھی جیسے کہ اس روایت کے راوی نے بیان کیا ہے, یہ بات کہی جاتی ہے کہ آپ نے یہ فرمایا کہ یہ پوران دخت کو ایرانیوں نے اپنا حکمران بنا لیا ہے, वो लोग जो एक औरत को अब हुक्मरान बना बैठे हैं फला नहीं पाएंगे। ये जुमला है, ज़ाहिर है ये किस पस मंज़र में कहा गया, ख़ुद उस हुकूमत को रिसालत मआब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ख़त लिख के बता चुके हैं कि उसका अंजाम क्या होने वाला है। वो पैगंबर की दावत की मुखातिब है, उसमें ये जुमला तारुफ में बोला गया है कि अब सूरत हाल क्या है या इसमें औरत की हुक्मरानी ज़ेर बहस है। ये सब चीज़ें मौजू बन सकती हैं, मैं इस वक्त कोई अपनी राय नहीं दे रहा, लेकिन बहरहाल ये राय कायम की गई और ये हमारे यहाँ आम अहले इल्म की भी राय है कि औरत हुक्मरान नहीं हो सकती। उससे पहले मौलाना अशरफ अली साहब थानवी बाज़ मामलात में इस्तिस्ना बयान कर चुके थे, यानी ये बता चुके थे कि इसको कैसे लेना चाहिए, और जिस तरह के फुकहा का आम तरीका है उसमें कुछ शरायत व हदूद के अंदर वो समझते थे कि औरत की हुक्मरानी भी हो सकती है। मौलाना सैयद अब्दुल्ला साहेब मौदूदी के यहाँ जब तजदीद और दावत का उसलूब हो तो वो चीज़ नुमायाँ हो गई जो तारीख़ में इससे पहले भी नुमायाँ होती रही है, यानी एक मामला है उसका एक दर्जा है, उसकी एक जगह है, उसके कुछ हदूद और शरायत हैं। वो उस तरह की कोई चीज़ नहीं है जिस तरह की चीज़ें बिलमूम दीन में हुरमत के दर्जे में बयान होती हैं, लेकिन दावत तजदीद दीन पर अमल करना है उसमें बाज़ुकात सख्ती दराती है। मैं इससे पहले भी अर्ज़ कर चुका हूँ कि तागूत की शर वज़ाहत में भी बिल्कुल ऐसे ही हुआ, और उन्होंने जिस तरीके से उसका इतलाक़ किया उसमें बाज़ ऐसे फतावा सादिर हुए कि जिसमें अगर कोई आदमी रेलवे की मुलाजमत भी करे मिसाल के तौर पर इस वक्त के अमेरिका में, तो वो तागूत की मुलाजमत बन जाएगी, या किसी और ऐसे मुल्क में जहाँ अल्लाह का कानून नाफिज़ नहीं है। ये मामला उनसे सादिर हुए हैं, और एक बड़े आलिम से, जिस तरह बाज़ गलतियाँ कोताहियाँ होती हैं उसी नौईयत की ये भी है। चुनाचे औरत की हुक्मरानी के बारे में भी वो एक ख़ास राय कायम कर चुके थे। अब एक दूसरा मामला ज़ेर बहस आ गया, वो ये है कि जब आप कोई राय कायम करते हैं या उस वक्त उसको बयान कर रहे होते हैं और वो आपको उस वक्त किसी अमली सूरत हाल से दोचार नहीं कर रही होती, तो जितने चाहे ज़ोर के साथ बयान कर लें, हराम के लफ्ज़ को जितना चाहे मखारिज से बोल लें, मुतलक के लफ्ज़ को जितना चाहे ज़ोर देकर बयान कर लें, कौन आपका हाथ पकड़ेगा? लेकिन जब मामला पेश आता है तो बाज़ औक़ात ये महसूस होता है कि ये क्या है, यहाँ पर भी मामला पेश आ गया, यानी अयूब खान साहब ने दस्तूर को मनसूख कर दिया, एक फ़ौजी हुकूमत कायम कर दी, उसके बाद उन्होंने एक नया आईन बनाकर मुल्क पर मुसल्लत कर दिया। ये सब है। अब उनके मुकाबले में हिजब मुखालिफ की जमातों ने उठने का फ़ैसला किया, जब इंतखाबात का ऐलान हुआ उनके बनाए हुए दस्तूरी के मुताबिक। ये बात यहाँ याद दहानी कराने की है कि वो इस तरह का दस्तूर नहीं था जैसे कि अब हमारा 73 का दस्तूर है या पहले 56 का दस्तूर था। उसमें बेसिक डेमोक्रेसीज, जिसको बुनियादी जमहूरियत कहा जाता था, उसका एक नया निज़ाम मुतारफ़ कराया गया था। उसमें लोग 80,000 नुमाइंदे मुंतखब करते थे,
बीडी मेंबर्स,
और वो 80,000 नुमाइंदे हैं जो बाद में सदर ममलकत का इंतखाब करते थे। पार्लिमानी निज़ाम नहीं था, सदारती निज़ाम था। अयूब खान साहब ने जब इंतखाबात का ऐलान किया तो दस्तूर तो तब्दील नहीं हो सकता था, इंतखाबात उसी के तहत होने थे, मगरबी पाकिस्तान में भी होने थे और मशरकी पाकिस्तान में भी होने थे, दोनों जगह एक ही सूरत हाल थी। उसमें ऐसी कौन सी शख्सियत हो सकती है कि जिसको सदर की हैसियत से मुकाबले में लाया जाए तो अयूब खान साहब को शिकस्त दी जा सकती है? उस पर ज़ाहिर है बड़े मकासद थे, यानी मामला तनहा इतना नहीं था कि एक इंतखाब हो रहा है उसमें हमने भी एक उम्मीदवार को लाना है और हमें इख्तलाफ है लिहाजा हमारे उम्मीदवार को फतह हासिल होनी चाहिए। मामला सिर्फ इतना नहीं था बल्कि इससे बढ़कर इस मुल्क के पूरे निज़ाम का मामला ज़ेरे बहस था। यहाँ आमिरियत है या जमहूरियत है, इस मुल्क का नज़्म किसी सदारती नौईयत के निज़ाम पे चलाया जाना है जिसमें सदर की हैसियत वही हो जाए जिस तरह के उस ज़माने में चौधरी मोहम्मद अली साहब ने, जो हमारे एक साबिक वज़ीर आज़म थे, मुख्तलिफ़ जलसों में फरमाया कि अगर सदर अय्यूब की हैसियत को उनके बनाए हुए दस्तूर में समझना हो तो लोग लायलपुर जाएं और उसका घंटा घर देख लें।
चीज़ वहीं निकलती है,
हर बाज़ार उसी की तरफ आता है और हर अब बाज़ार उसी से निकलता है। तो ये सूरत हाल थी, यानी गोया जिस दस्तूर को गलत समझा जा रहा था, जिस निज़ाम को गलत समझा जा रहा था, جس نظام سے نجات حاصل کرنا پیش نظر تھا، یہ پیش نظر تھا کہ اس ملک کو دوبارہ جمہوریت کے راستے پر، یعنی حقیقی جمہوریت کے راستے پر ڈالا جائے، تو یہ بڑے مقاصد تھے جن کو سامنے رکھ کر اس وقت کی حزب اختلاف نے یہ فیصلہ کیا کہ محترمہ فاطمہ جناح ہی ایک ایسی شخصیت ہو سکتی ہیں جو ایوب خان صاحب کے مقابلے میں لائی جا سکے۔ ایوب خان صاحب فوج کی پشت پناہی سے آئے تھے، بڑی غیر معمولی شخصیت رکھتے تھے۔ یہ بات میں نے کئی مرتبہ آپ کو سنائی ہے، ہمارے جلیل القدر استاذ مولانا امین حسن اصلاحی فرمایا کرتے تھے کہ وہ جب ان سے ملے تو کمرے میں بیٹھے تھے، اور ایوب خان جب داخل ہوئے تو وہ کہتے ہیں کہ میں نے ان کو دیکھا تو میں نے کہا کہ جل جلالہ ہوا امن والو، بڑی شخصیت تھی غیر معمولی۔ تو اس شخصیت کے بھی اثرات لوگوں پر ہوتے ہیں۔ پھر یہ کہ بعض معاملات میں بڑے غیر معمولی اقدامات بھی کیے گئے تھے۔ ہم نے پہلی مرتبہ بچپن میں سنا کہ صفائی کیسے ہوتی ہے اور قصاب کی دکان پر کیا اہتمام کرنا چاہیے، تو اس طرح کے بڑے اقدامات بھی ہوئے جن کے اثرات دیہات تک میں گئے، لوگوں کے اندر بھی ایک خاص تعلق کے خاطر پیدا ہو گیا۔ پھر اس میں ترقی بھی ہوئی، یعنی ہمارے ہاں اگر آپ غور کر کے دیکھیں تو سرمایہ داری نظام جس اصول پر کام کرتا ہے اس میں کچھ خاندان پیدا ہوتے ہیں، پھر بڑی صنعتیں لگتی ہیں، یہ معاملہ بھی اس دور میں اپنے کمال کو پہنچا۔ اور یہ معلوم ہے کہ اس وقت ایوب خان صاحب ایک باقاعدہ عشرہ ترقی منا کے رخصت ہوئے ہیں، یعنی 10 سال ایسے تھے کہ جس میں حقیقی معنی میں ملک نے ترقی کی۔ یہ سب چیزیں تھیں، میں یہاں پر کسی چیز کی تائید یا تردید نہیں کر رہا، وہ تصویر آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں کہ ایک ایسی شخصیت سے، اس کے بنائے ہوئے نظام سے حزب مخالف کو سابقہ پیش آ گیا ہے۔ وہ اس نظام کو ختم کرنا چاہتی ہے، اس کے بنائے ہوئے دستور کو ختم کرنا چاہتی ہے، وہ ملک کو کسی دوسرے راستے پر ڈالنا چاہتی ہے، بلکہ سادہ لفظوں میں کہیے کہ اس کو وہاں واپس لے جانا چاہتی ہے جہاں سب نے مل کے 56 کا دستور بنایا تھا۔
ٹھیک،
تو یہ ایک سادہ معاملہ اب نہیں رہا کہ ایک انتخاب ہے، انتخاب ہوتے رہتے ہیں، اس میں آج ٹرمپ صاحب آ گئے کل کوئی اور صاحب آ جائیں گے، اس سے کیا فرق واقع ہوتا ہے۔ یہ نوعیت نہیں تھی، بلکہ پورے ملک کا نظام زیر بحث تھا حقیقی معنی میں، تاکہ اس کی اہمیت سمجھ میں آ جائے۔ اس میں حزب مخالف نے یہ فیصلہ کر لیا۔ جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے، اگر میں غلطی نہیں کر رہا، تو مولانا سید ابو اللہ صاحب مودودی اس وقت جیل میں تھے، وہاں ہی انہوں نے یہ فیصلہ کیا، اور یہ بتا دیا گیا، انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ اگر محترمہ فاطمہ جناح کا انتخاب کیا گیا ہے تو ہم ساتھ دیں گے۔ یہ فیصلہ اگر خالص مذہبی اعتبار سے اور ان کی تحریروں کی روشنی میں اور جس طرح سے وہ ایسی باتیں بیان کرتے تھے ان کو سامنے رکھ کر کیا جائے، تو یہ صاف بات تھی کہ ایک چیز جو دین میں حرام ہے، عورت کی حکمرانی ہو ہی نہیں سکتی، تو اس کو کیسے جائز قرار دے دیا گیا۔ اس پر دائیں سے بائیں سے اعتراضات ہونا شروع ہو گئے۔ یہ تو معلوم ہے نا کہ علماء اور ہر طبقہ فکر کے علماء اپنے اپنے طریقے سے سیاسی معاملات کو بھی دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ ہمارے ملک میں یہی صورتحال ہے، یعنی وہاں یہ صورت کبھی بھی نہیں رہی کہ علماء سیاست سے بالکل غیر متعلق ہو جائیں۔ وہ اگر مدرسوں میں بھی بیٹھے ہوں تو مذہبی یا اخلاقی معاملات کے بارے میں اپنی کچھ رائے دیتے رہتے ہیں۔ اس میں بھی وہی ہوا، یعنی اگر آپ میدان میں اتر رہے ہیں تو اس میں آپ جماعت اسلامی کے مخالفین بھی ہیں، مولانا سید ابو اللہ صاحب مودودی کی دینی فکر کے مخالفین بھی ہیں، ان سے اختلاف رکھنے والے دانشور بھی ہیں، اور وہ لوگ بھی ہیں کہ جو جدید تعلیم پائے ہوئے ہیں لیکن ان کے نقطہ نظر کو صحیح نہیں سمجھتے۔ اس وقت ہمارے ہاں لبرل تحریکیں بھی اپنے طریقے پر کام کر رہی تھیں۔ تو یہ سب چیزیں ہیں، ان کو سامنے رکھ کر اگر دیکھا جائے تو یہ مسئلہ پیدا ہو گیا کہ انہوں نے تو پہلے ایک چیز کو حرام قرار دیا تھا، اب اس کو وہ حلال کیسے قرار دے رہے ہیں۔ اس میں مولانا سید ابو اللہ صاحب مودودی نے اپنا ایک خاص فلسفہ پیش کیا اپنے نقطہ نظر کی وضاحت میں، اس کو فلسفہ حکمت عملی سے تعبیر کیا جا سکتا ہے۔ یہ تعبیر ان کی اپنی اختیار کردہ ہے، تفہیمات میں لوگ وہ مضامین پڑھ سکتے ہیں ان کی کتاب تفہیمات میں۔ انہوں نے یہ فرمایا کہ دین میں حرمتیں سب ایک درجے کی نہیں ہوتی، یعنی کچھ حرمتیں وہ ہیں جو ابدی حیثیت رکھتی ہیں، وہ کبھی حلت میں نہیں بدلتی، جیسے زنا ہے، قتل ہے، تو یہ حرام ہے، یہ حرمتیں ہمیشہ قائم رہیں گی۔ کچھ حرمتیں وہ ہیں कि जिनको देखा जा सकता है कि वो किसी बड़ी मसलियत के मुकाबिल में तो नहीं आ रहे। इसमें अगर किसी आदमी को, अब देखिए यहाँ से वो हिकमत अमली की ताबीर कैसे दाखिल करते हैं, इसमें अगर किसी आदमी को दीन की इकामत की जद्दोजहद करनी है तो वो ज़मीन पर करेगा, इस ज़मीन के हालात का मुताला करेगा। उसमें वो इस तरह की चीज़ों के बारे में अगर इसरार करने लग जाए तो अपनी राह खोटी कर बैठेगा। लिहाजा ये तफरीक मलहूज रखनी चाहिए कि अबदी हुरमतें कौन सी हैं और वो हुरमतें कौन सी हैं कि जिनके मुकाबले में अगर कोई बड़ी मसलहत आ जाए तो उन्हें नज़रअंदाज किया जा सकता है।
बड़ा गहरा फलसफा,
इसको उन्होंने हिकमत अमली के फलसफे के तहत बयान किया। चुनाचे ये मालूम है कि उसी ज़माने में हमारे उस्ताद अमीन हसन इस्लाही ने इसके ख़िलाफ़ मज़ामीन लिखे और इस हिकमत अमली के फलसफे बड़ी शदीद तनकीद की है। ये अबदी हुरमतें और गैर अबदी हुरमतें पर भी उन्होंने बहुत से मज़ामीन लिखे, वो लोग चाहें तो उनके मकालात में पढ़ सकते हैं। और मौलाना सैयद अबुल्ला साहिब मौदूदी ने उनका जवाब दिया है, वो आप तफ़ीमात में देख सकते हैं। उसमें ज़ाहिर नज़ायर और शवाहद पेश किए गए। मसलन ये कहा गया कि अल्लाह के दीन में भी तो आखिर यही तालीम दी गई है कि लोगों के दरमियान उनके नस्ब की बुनियाद पर कोई फ़र्क नहीं किया जा सकता। इस्लाम कोई ख़ास कबीले का मज़हब नहीं है। उसमें तो यही कहा गया है कि किसी गोरे को काले पर, किसी काले को गोरे पर कोई फजीलत हासिल नहीं। लेकिन रिसालत मआब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अरब की मसलियत देखकर ये फ़ैसला किया कि आइम्मा कुरैश में से होंगे। तो इस तरह की बहुत सी दलीलें मौलाना सैयद अबुल्ला साहिब मौदूदी ने पेश फरमाई, उन सब का महाकमा किया है उस्ताद इमाम ने, वो अलग से देखा जा सकता है, इस वक्त हमारा मौजू नहीं। सिर्फ मैं ये बताना चाहता हूँ कि ये बहस उस वक्त हुई और उस बहस में मौलाना सैयद अबुल्ला साहिब मौदूदी ने अपना नुक्ता नज़र बयान किया और उससे ये वाजे कर दिया कि जब आप दुनिया में जद्दोजहद करने के लिए उतरते हैं तो सियासत और मईशत के मामलात में आप कोई ऐसा रवैया नहीं इख्तियार कर सकते, अगर ख़ुलासा किया जाए कि जहाँ चीज़ें स्याह और सफ़ेद में तकसीम हो जाएंगी। इसलिए दीन के अहकाम के बाब में भी ये देखना पड़ता है कि कौन सी चीज़ें ऐसी हैं जिनको आप फ़ौरन हासिल करेंगे, कौन सी चीज़ें ऐसी हैं जिन पर इसरार और इलाह का तरीका इख्तियार करेंगे, कौन सी चीज़ें हैं जिनको मौखर किया जा सकता है या हिकमत अमली के तकाज़ों के तहत उनमें मसलियत रवा रखी जा सकती है। तो ये गोया उनका पूरा मौक़िफ़ था। चुनाचे वो पूरी कुव्वत के साथ मैदान में उतरे और फिर उन्होंने एक बड़ी मुहिम चलाई, ज़ाहिर है सब लोगों के साथ मिलकर। चौधरी मोहम्मद अली भी उस वक्त ज़िंदा थे और मुझे यहाँ तक याद पड़ता उनकी निज़ाम इस्लाम पार्टी थी, इसी तरह जमात इस्लामी, बाकी जितनी हिजब मुखालिफ की जमातें हैं वो सब एक मुत्ताहिदा कुव्वत बनकर सामने आईं। और मोहतरमा फातिमा जना को, जो कायदे आज़म की बहन थी, उन्होंने अपना मुत्तफिका उम्मीदवार बना के खड़ा कर दिया। उसमें फतह नहीं हो सकी, शिकस्त हो गई। ताहम ये एक बड़ा मार्का था जिसमें मजहब भी एक हवाले से ज़ेर बहस आ गया।
बड़ी खूबसूरती से आपने वो पस मंज़र वाज़े किया और ये भी बताया कि एक बड़ा मुफक्किर, दीन का एक बड़ा आलिम किस तरीके से तदबीक पैदा करता है। अच्छा हम सब, ये जो उन्होंने मिसाल के तौर पर एक तरह की तौफीक पैदा की, एक नया फ़लसफ़ा पैदा किया और एक मकसद के हुसूल के लिए, ज़ाहिर बात है जो हिदायत उनके नज़दीक अल्लाह और अल्लाह के रसूल की हिदायत थी उसको कुछ थोड़ा सा मॉडिफाई कर दिया वक्ती लिहाज से, ये करने की जो सलाहियत है इससे भी एक अंदाज़ा होता है कि मौलाना मौदूदी जो है अपनी ज़ात के अंदर एक मुश्तहिद मिजाज आदमी थे। वो महज किसी ज़ाहरी हुक्म को देख कर उसके पीछे नहीं चलते थे बल्कि वो जो बड़े मकासद हैं उनके तहत शरीयत के जो दूसरे मकासद हैं उनकी उनकी रोशनी में उनको हल करने की, तो ये जो मुश्तहिदाना बसीरत है ये मौलाना मौदूदी की उसी फहम और बसीरत का एक इजहार है जो कि इस पूरे के पूरे फ़लसफे में सामने आया।
इसमें तो कोई शुबा नहीं है कि वो इसी दर्जे के उलमा में से थे, चीज़ों को बड़े वसी तनाजुर में देखते भी थे और हमारी इल्मी रवायत के अंदर खड़े होकर उसका हल निकालने की भी सलाहियत रखते थे बहुत से मामला। यानी मैं यहाँ उनके इस्तदलाल से इत्तेफाक नहीं करता, मेरे नज़दीक बड़ा कमज़ोर इस्तदलाल है, लेकिन इस सब के बावस्फ वो इसी सलाहियत के लोगों में से, इसमें कोई शक नहीं है। ताहम जो असल चीज़ जंजीर पा बन जाती थी वो ये थी कि पहले एक राय गलत कायम कर ली जाती, वो जो पहली राय है जो औरत की इमामत के बारे में है वही बिल्कुल बेबुनियाद है। दीन में हुरमतें इस तरह नहीं बयान होती, ना हुरमतें इस तरीके से अक्स की जाती हैं। दीन में हुरमतों के उसूल बड़ी कतईयत से बयान किए गए हैं, कुरान में बयान हुए हैं, रवायतों में बयान हुए हैं, उनके बारे में कोई इबहाम नहीं है और ना उसमें अबदी और गैर अबदी की ये तकसीम करने की अभी ज़रूरत पड़ती है। लेकिन जब आप पहला कदम गलत उठा लेते हैं तो फिर दूसरे कदम में ऐसी ही ज़हानत का मुजाहरा करना पड़ता है, और वो इसमें कोई शक नहीं है कि इसकी अहलियत रखते थे कि मामले को इस तरीके से फिर हल करके अपने लिए राह निकाल दें। उसमें उनकी ज़ुबान से एक जुमला भी निकला, उन्होंने मुख्तलिफ मौक़ों पर तकरीर करते हुए कहा कि हमने मोहतरमा फ़ातिमा जना की हिमायत का फ़ैसला किया है, एक तरफ एक मर्द है जिसमें मर्द होने के सिवा कोई ख़ूबी नहीं, और एक तरफ एक औरत है जिसमें औरत होने के सिवा कोई खामी नहीं। उस पर उस्ताद इमाम ने तबसरा किया कि ताज्जुब है इन लोगों पर, 9-10 लोग हैं ये, सारी हिजब मुखालिफ इकट्ठी है और इनमें कोई एक मर्द भी ऐसा नहीं जो एक ऐसे मर्द का मुकाबला कर सके जिसमें मर्द होने के सिवा कोई ख़ूबी नहीं। तो ये बड़ी दिलचस्प गुफ्तगुएँ हैं जो उस मौके पर हुई, मज़ामीन लिखे गए इधर मीसाक में उधर तर्जमान कुरान में, उनको लोग अगर पढ़ें और ज़रा बाला तर होकर पढ़ें तो वो बड़ी बसीरत की चीज़ें उसमें देख सकते हैं। मसलन उस्ताद इमाम ने बड़ी दकीक बहस करके ये बताया है कि अमरुहुम शूरा बैनहुम का क्या मुकाम है, ये जो अइम्मत बिन कुरैश है उसका क्या महल है, हिकमत अमली होती क्या है, उसके दायरे क्या हैं, दीन में इस्तिस्ना कैसे मिलता है। वो बड़ी नफीस बहसें हैं, लोगों को ज़ौक हो तो वो उनको पढ़ सकते हैं।
तो बिल्कुल वाज़ेह हो गया, पूरा का पूरा अहद का मंजरनामा गाम साहब की गुफ्तगू सामने आया। उस अहद ही के एक सहाफ़ी का इस मौजू से मतलब इकतबास पेश करके हम प्रोग्राम के खात्मे की तरफ बढ़ेंगे। वो लिखते हैं कि मौलाना सैयद अबुल आला मौदूदी ने 11 अक्टूबर 1964 को अंदाज़ कलंदराना इख्तियार करते हुए अपने बयान में चैलेंज किया कि कोई शख्स साबित नहीं कर सकता कि अज़रूए शरीयत औरत का सरबराह मुमलिकत होना मुतलकन हराम है, और इस सिलसिले में इस्तिस्ना की कतई कोई गुंजाइश नहीं है। हुकूमत लोगों को मजहब के नाम पर गुमराह कर रही है। हुकूमत की जानिब से जमात इस्लामी पर इल्ज़ाम आयद किया गया कि वो दीन में इख्तरा पैदा करना चाहती है और हुकूमत को ऐसे इल्ज़ाम आयद करने से गुरेज करना चाहिए, क्योंकि ख़ुद इस्लाम उन्हें उस वक्त याद आता है जब उसकी आड़ लेने की ज़रूरत पेश आती है। जिस वक्त आयली कवानीन नाफिज किए गए, उलमा और अवाम ने शदीद एहतजाज किया, लेकिन उन्होंने इस्लाम की तरफ से आयली कवानीन पर जो इख्तलाफात थे उसको पेश नज़र नहीं रखा। इसी तरह से फिर ये कहा गया कि जब खवातीन को वजीर मुकर्रर किया गया तब भी उन्होंने इस्लाम को फरामोश किए रखा, अब जब अपना मामला आया तो उन्हें इस्लाम याद आ गया। मौलाना मौदूदी ने किसी मौके पर मलका सभा का हवाला देते हुए भी दलील पेश की कि जिस वक्त वजीर सुलेमान पर ईमान लाई तो सैयदना सुलेमान को वही नाजिल ये नहीं हुई कि औरत को सरबराह मुमलिकत नहीं होना चाहिए, बल्कि इससे साफ जाहिर होता है कि इसमें इस मौके की नज़ाकत के लिहाज से कोई हर्ज नहीं है। अच्छा, हम सब एक बड़ा दिलचस्प नुकता खात्मे से पहले, मैंने आपकी किताब बिल्कुल इब्तदाई किताब 70 की दिहाई के अवाखर में आपने वो उसमें कुछ मजामीन लिखे थे। आप भी चूंकि इस पूरे के पूरे फ़लसफे से हमेशा मुतासर है, जमात इस्लामी से ये पूरी की पूरी सोच का आगाज़ हुआ मौलाना मौदूदी की फ़िक्र से, आप भी लिखते रहे हैं कि जी ये जमहूरियत का निज़ाम हो तब भी जो ख़वातीन हैं उनको वोट की इजाज़त नहीं होनी चाहिए, उसके दलाली भी देते हैं। खुद मौलाना की जमात भी जमहूरियत जिस जमहूरियत की कायल थी उसमें भी ख़वातीन के वोट की कायल नहीं थी, लेकिन दूसरी तरफ ख़वातीन को सरबराह मुल्कत बनाने पर उनको,
ये सारी दुनिया में ऐसे ही हुआ है, यानी फ़िक्र का इर्तका हुआ है बहुत बड़े पैमाने पर। आप अमरीका की तारीख पढ़ें, आप यूरोप की तारीख पढ़ें, यहाँ पहले दिन औरतों को वोट का हक़ नहीं मिल गया। इस पर बड़ी गैर मामूली किताबें लोगों ने लिखी हैं। आप ऑन लिबर्टी को पढ़ लें मिल की, वाजे हो जाएगा कि औरतों के बारे में क्या राय थी, मगरब के फ़लसफ़ी ख्वातीन के बारे में क्या राय रखते थे। तो दुनिया के अंदर इसी तरीके से ये इर्तकाई अमल जारी रहता है। हमारे यहाँ भी जो तहजीबी रवायत कायम हुई, जिस तरह की सकाफत वजूद में आई, औरतों के साथ जिस तरह के मामलात हमारी तारीख में हुए, उसकी बुनियाद पर बाज़ आरा कायम हुई और उन्हीं आरा में हमने भी शऊर की आँख खोली, उन्हीं को हम भी सही समझते थे। बाद में जब दीन का बराह रास्त मुताला किया और मालूम हुआ कि कुरान कहाँ खड़े होकर बात कर रहा है, रिसालत पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशादात को कैसे समझा जाता है, तो बहुत सी चीज़ों की गलती वाजे हो गई। ये ऐसे ही होता है। असल चीज़ ये है कि आप जब इब्तदा में सोसाइटी के सामने कोई चीज़ लेके आते हैं तो वहाँ किस दर्जे में आपको उस सारे मामले की तहकीक कर लेनी चाहिए।
तब बिल्कुल वाजे हो गया जमात इस्लामी की ज़िंदगी में 3 बड़े अहम और वाकयात हुए, वो क्या थे इंशाल्लाह कल ज़ेर बहस आएंगे। वक्त यहाँ पे ख़त्म होता है, दोबारा हाज़िर ख़िदमत होंगे। अब तक आपका बहुत शुक्रिया।